10 अक्टूबर दिन शनिवार के नमस्कार भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। बिहार विधानसभा चुनाव की 49 सीटों पर आज थम जाएगा प्रचार। जिसके नेता मुस्लिमों को बात बात पर देते हैं पाकिस्तान भेजे जाने की धमकी, वहां आज गीता और कुरान की साथ साथ हो रही बात।
हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगी, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म और ईमान रखेंगी।
अब सीरिया के विद्रोहियों को अमेरिका नहीं देगा प्रशिक्षण और सुनेंगे कहानी उन गांव की जहां लोग खुद को गिरवी रखने को है मजबूर।
बारिश ने नहीं डरे, बारिश कम है, अगर खाने को मिलता तो नहीं मिलता पर फिर गन्ना तोड़ के वापस रुपए जाने का फिर इधर लेने का वो खाने का है।
सब आगे लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। बिहार में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो रहा है। पहले चरण में 12 अक्टूबर को 49 सीटों के लिए मतदान होगा। इन सीटों पर 1,35,00,000 मतदाता 586 उम्मीदवारों में से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। इजरायली सेना का कहना है कि फलस्तीनी लड़ाकों ने गजा पट्टी से दक्षिणी इसराइल में रॉकेट दागे हैं। शुक्रवार को इसराइल की गोलीबारी में 6 फलस्तीनी मारे गए थे। इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक ये रॉकेट एक खुले मैदान में गिरा और इसराइल में चेतावनी सायरन बज उठे। शुक्रवार को इसराइली सेना ने कहा था कि फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सैन्य बलों ने गोलियां चलाईं। गजा में हमास के नेता इस्माइल हनीये ने कहा है कि एक नया इंतिफादा या उग्र विरोध जन्म ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में इसराइल और फलस्तीनियों के बीच तनाव बढ़ा है और चाकूबाजी की कई घटनाएं हुई हैं जिनमें 4 इसराइली भी मारे गए हैं। शुक्रवार को भी हिंसक वारदातें हुईं। इसराइली पुलिस के प्रवक्ता माइकी रोजेनफील्ड ने कहा, एक दूसरा चरमपंथी हमला हुआ है जो हेब्रॉन क्षेत्र के नज़दीक क्रियात अरबा इलाके में हुआ। इस हमले में मामूली रूप से घायल हुए एक पुलिसकर्मी ने एक हमलावर फलस्तीनी चरमपंथी को गोली मार दी। यरूशलम, तेल अवीव समेत देश के सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अमरीका सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने की अपनी बेहद महंगी रणनीति के नाकाम होने के बाद नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमरीका सीरिया में विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम को बंद कर रहा है। पिछली योजना के तहत पेंटागन ने सीरिया में विद्रोहियों को प्रशिक्षित करने पर $50 करोड़ खर्च किए, लेकिन ये रणनीति बुरी तरह नाकाम रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका से प्रशिक्षण लेने वाले सिर्फ 5 या 6 लड़ाके ही फिलहाल सीरिया में लड़ रहे हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी बढ़त हासिल करते हुए अलप्पो के करीब इलाके में विद्रोहियों के कब्जे से कई गांव छीन लिए हैं। इस्लामिक स्टेट अलप्पो की दहलीज पर पहुंच गया है और उत्तरी परिधि से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इस्लामिक स्टेट ने ये बढ़त रूस के हवाई हमलों के बावजूद हासिल की है। रूस का कहना है कि सीरिया में उसके हवाई हमलों के निशाने पर इस्लामिक स्टेट के लड़ाके हैं। वहीं अमरीकी नेतृत्व के गठबंधन का कहना है कि रूस के हवाई हमलों में राष्ट्रपति बशर अल असद के अन्य विद्रोहियों को निशाना बनाया गया है। सीरिया में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि रूसी हवाई हमलों के कारण विद्रोही कमजोर हुए हैं, जिससे इस्लामिक स्टेट को आगे बढ़ने में मदद मिली है। तुर्की में पुलिस ने ट्विटर पर राष्ट्रपति का कथित अपमान करने के आरोप में एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार के संपादक को गिरफ्तार कर लिया है। टुडे जमान के संपादक बुलेंट केनेस को इस्तांबुल में उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी को टीवी पर लाइव दिखाया गया। बीबीसी समाचार।
ये नमस्कार भारत है, बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा, स्वागत है आप सबका। पांच चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को होने जा रहा है। चुनाव कानून के मुताबिक वोटिंग के 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा। 12 तारीख यानी सोमवार को सूबे के 10 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें करीब 1,35,00,000 मतदाता हैं। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में भाजपा 27, लोजपा 13, रालोसपा 6 और हम सेकुलर 3 सीटों पर मैदान में है, जबकि महागठबंधन में जदयू 24, राजद 17 और कांग्रेस 8 सीटों पर ताल ठोक रही है। साथ ही वाम मोर्चा और सपा, एनसीपी और जन अधिकार पार्टी का गठबंधन भी मजबूती से मैदान में है। इससे चुनाव कई जगहों पर बहुकोणीय हो गया है। 12 अक्टूबर को वोटिंग के लिए जा रही इन 49 सीटों पर आज प्रचार थम जाएगा। एक दिन पहले तक चुनावी रैलियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम में बिजली के सवाल पर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया।
हमने सपना देखा है 24 घंटे बिजली पहुंचाने का। आज बिहार में बिजली होती तो कारखाने लगते कि नहीं लगते? अगर बिहार में बिजली होती तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती कि नहीं होती? लेकिन बिजली देने का वादा करके उन्होंने वादा नहीं निभाया।
नीतीश कुमार भी कहां पीछे रहने वाले थे?
अगर आप बिजली नहीं पहुंचाते तो आपका वोट बहुत बुरी तरह घटा रहता, क्योंकि टेलीविजन पर प्रचार होता था अब की बार मोदी सरकार, बच्चा बच्चा कहता था अब की बार मोदी सरकार, वो सब झांसे में आ गए। अरे हम तो बिजली लाए, इसका फायदा आपको हुआ।
पहले चरण में जो प्रमुख उम्मीदवार हैं उनमें समस्तीपुर की सराय रंजन से जदयू विधायक दल के नेता विजय चौधरी, मुंगेर के तारापुर से हम सेकुलर के शकुनी चौधरी, खगड़िया के अलौली से लोजपा के पशुपति कुमार पारस, कहलगांव से कांग्रेस के सदानंद सिंह शामिल हैं। कई नेताओं के पुत्र भी चुनाव मैदान में हैं। इनमें सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज कल्याणपुर, शकुनी चौधरी के बेटे राजेश कुमार खगड़िया और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के दो बेटे शामिल हैं। पहले चरण में करीब 1,35,00,000 मतदाता वोट डाल पाएंगे। सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार समस्तीपुर जिले के दो सीटों मोरवा और मोहिउद्दीन नगर से मैदान में हैं, तो सबसे कम 6 नवादा की वारसलीगंज सीट पर हैं। इस चरण में खासकर जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2010 के चुनाव में उसे इन 49 में से 29 सीटों पर जीत मिली थी। मनीष शांडिल, BBC पटना।
पिछले दिनों दादरी में बीफ खाने के नाम पर हुए कत्ल के बावजूद पर हर तरफ हंगामा मचने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग खामोश रहे। हालांकि दो दिनों पहले उन्होंने इस पर एक बयान दिया, सीधे तौर पर नहीं लेकिन उसे इससे जोड़कर देखा गया। राजनीतिक बयानों का जो हल्कापन हर तरफ दिख रहा था वो बिहार के चुनाव में भी नजर आया। लोग एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहे और बात विकास से ख़त्म होते होते जाति और धर्म पर उतर आई। लेकिन प्रधानमंत्री बयान के अगले दिन से ही खुद भाजपा के चुनावी प्रचार के सुर ही बदले हुए दिखे। बिहार के बेगूसराय से BBC संवाददाता सलमान रावी ने भेजी है रिपोर्ट।
ये किसी मस्जिद से हो रही आजान की आवाज नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वाहन से चुनावी प्रचार किया जा रहा है। नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद अब पार्टी के प्रचार के सुर ही बदल गए हैं। अब गिरिराज सिंह और योगी आदित्यनाथ के बयानों को नहीं बचाया जा रहा है, बल्कि प्रचार ने अब एक नया रूप ले लिया है।
हाथों में गीता, सीने में कुरान रखेंगी, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म और ईमान रखेंगी, शंख बजे भाईचारे का अमन का अजान रखेंगी। काशी भी होगा, काबा भी होगा, पहले भारतीय मानचित्र पर अपने चित्र का नाम रखेंगे।
ये सब कुछ बस एक ही दिन में हो गया, और वो भी बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवादा में हुई चुनावी सभा के बाद। इस सभा में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ने की बजाय गरीबी से लड़ने का आह्वान किया। हालांकि नवादा से पहले उन्होंने मुंगेर और बेगूसराय में हुई जनसभाओं में खुद भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर तीखे वार किए थे। बहरहाल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान रंग लाया और कई दिनों से बिहार में चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी।
मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि राजनीति के कारण छोटे मोटे हर अपना
राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उठपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर, उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है।
मोदी के बयान का असर फौरन कार्यकर्ताओं में भी दिखने लगा। ऐसा लगा कि सब कुछ अचानक रातों रात बदल गया हो।
आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं?
हाँ बिल्कुल है।
तो ये बताइए, आप लोग के आज बड़े बदले सुर नजर आ रहे हैं। आज अजान की भी आवाज आ रही है आपकी गाड़ी से,
बिल्कुल आ रही
है। और शंख की भी आवाज आ रही है। क्या नरेंद्र मोदी जी के कल भाषण नवादा में?
बिल्कुल रहा, कारण है वो पहले था, अब नहीं है। अब विकास की बात है, मोदी जी की बात है। आज से बिल्कुल खत्म है, जात पात कहीं है ये नहीं है। और जो लोग सोचते हैं सोचने दीजिए, धर्म भी है। धर्म तो हमारा, सब धर्म को हम मान रहे हैं, हिंदुस्तान में बिल्कुल मान रहे हैं। आपने सुना जो हर धर्म का आवाज हमारे वीडियो में बज रहा है वो, अरे जितना गरीब है सब मिलके लड़िए, यही ना कहा मोदी जी ने? तो गरीब में सब कोई आते हैं, ये कोई जरूरी है कि किसी विशेष जात का ही गरीब थोड़े होता है, हर कोई गरीब है।
राजनीतिक विश्लेषक अचानक इस बदलाव से स्तब्ध हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री पर राष्ट्रपति के बयान का ही असर हुआ हो, या फिर वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के वो ट्वीट जिसमें उन्होंने राजधर्म की बात नरेंद्र मोदी को याद दिलाई थी, उसका भी असर हुआ हो। कारण चाहे जो रहा हो, मगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के वाहन से अब मोहब्बत ही मोहब्बत बरस रही है। सलमान रावी, BBC बेगूसराय।
हाथों में गीता, सीने में कुरान रखेंगी, मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म और ईमान रखेंगी।
दुनिया की बड़ी खबरें BBC के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर BBC दुनिया, ETV नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है BBC दुनिया, मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए BBC दुनिया शाम 9:20 पर ETV के साथ साथ bbchindi.com और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी। BBC दुनिया।
और अब एक खबर सीरिया से। अमेरिका ने कहा है कि वह सीरिया में विद्रोही गुटों को प्रशिक्षण देना बंद कर देगा। अमेरिका के $50 करोड़ रकम वाले प्रोग्राम की बड़ी निंदा हुई थी जब ऐसी बातें सामने आईं कि विद्रोही गाड़ियां और हथियार चरमपंथियों को सौंप रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कम से कम 5400 लड़ाकों को इस साल प्रशिक्षण दिया जाना था, जबकि तकरीबन 15000 को अगले साल। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
अमेरिका ने कहा है कि वह सीरिया में नए विद्रोहियों को प्रशिक्षण नहीं देगा और मौजूदा विद्रोहियों को ही उपकरण और हथियार मुहैया कराएगा। अमेरिका प्रशिक्षित विद्रोहियों के अपनी गाड़ियां और हथियार चरमपंथियों को देने की खबर सामने आने के बाद $50 करोड़ के अमेरिकी कार्यक्रम की कड़ी आलोचना हुई है। पिछले महीने ये खबर सामने आई थी कि जमीन पर सिर्फ 4 या 5 अमरीकी प्रशिक्षित सीरियाई लड़ाके ही बचे हैं। अमरीकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का कहना है कि अब केवल कुछ चुनिंदा नेताओं और उनके गुटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमेरिकी कार्यक्रम के तहत इस साल 5400 लड़ाकों को तैयार करने का प्रस्ताव था। इस संख्या को वर्ष 2016 तक बढ़ाकर 15000 किया जाना था। अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा है कि वे कार्यक्रम की शुरुआती कोशिशों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा,
We have been looking for now several weeks, at ways to improve that program.
हम कई हफ्तों से इस कार्यक्रम में सुधार करने के तरीके तलाश रहे थे। मैं इस बारे में शुरुआती प्रयासों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए अब हम जमीन पर इस्लामिक स्टेट को हराने और चरमपंथियों के कब्जे से इलाके छुड़ाने के रणनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इसी बीच सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है। इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलप्पो के बाहरी इलाकों में कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और अब वो शहर की उत्तरी परिधि से महज 10 किलोमीटर दूर हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ रूस और अमेरिका के हवाई हमलों के बावजूद इस्लामिक स्टेट ने ये अहम बढ़त हासिल की है। रूस का कहना है कि बीते 24 घंटों में उसके हवाई हमलों में 300 चरमपंथियों की मौत हो गई है, लेकिन इलाके में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि रूस अन्य विद्रोही गुटों को निशाना बना रहा है, जिससे इस्लामिक स्टेट को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। इसी बीच सीरिया में सरकारी सैन्य बलों के साथ लड़ रहे ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक शीर्ष कमांडर हुसैन हमदानी भी मारे गए हैं। उनकी मौत किन हालातों में हुई है, अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।
और दूसरी तरफ सीरिया में रूस की दखलंदाजी और साथ साथ नेटो देशों के बीच जो उथल पथल और उनमें जो खींचतान हो रही है, उसकी रिपोर्ट हमने आपको पहले सुनाई है। और अब दिलनवाज पाशा से ही सुनिए कि आज भारत के अखबार क्या कह रहे हैं। दिलनवाज साहब, अखबारों में केजरीवाल साहब की तस्वीर बड़ी साफ साफ नजर आ रही
है। जी, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता कर अपने एक मंत्री आसिम खान को बर्खास्त कर दिया। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है, हटाए गए आपके एक और मंत्री, घूसखोरी का आरोप। तो दैनिक जागरण कहता है, घूस मांगने वाला मंत्री बर्खास्त। और एक और खबर जो लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, वो है ये, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश को मंजूरी दे दी है जिसके तहत दिल्ली में घुसने वाले किसी भी भारी वाहन को पॉल्यूशन चार्ज देना होगा। यानी एक बार घुसने के लिए 1300 रुपये अदा करने पड़ेंगे। ये आदेश अगले 4 महीने तक के लिए लागू रहेगा और इसकी फिर समीक्षा की जाएगी। ये सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में आगरा के नज़दीक एक गाय के को मारे जाने को लेकर हुई अफवाह पर हुए दंगे को पहले पन्ने पर जगह दी है। ये खबर बाकी अखबारों में भी पहले पन्ने पर है। द हिंदू ने संगीत सोम, जो आम आदमी माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मेरठ के सरधना से विधायक हैं, मुजफ्फरनगर दंगों के अभियुक्त भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भी जा चुके हैं, इनके बारे में खबर दी है, जिसके मुताबिक ये एक बड़े मांस एक्सपोर्टर हैं, बीफ एक्सपोर्टर हैं। और अभी दो तीन दिन पहले जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बहुत सख्त तेवरों में गोरक्षा की बातें कही थी। एक और खबर जिसका जिक्र करना चाहूंगा, दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। इसके मुताबिक इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहा आजमगढ़ का एक नौजवान देश वापस लौटना चाहता है, उसके परिजनों ने सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा पूरी जानकारी के लिए। और अब सुनते हैं कि आज किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
उत्तर कोरिया में आज सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की 70वीं वर्षगांठ पर विशाल सैन्य रैली निकाली जाएगी, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। शुक्रवार को इजरायली सैन्य बलों की प्रदर्शनकारी फलस्तीनियों पर गोलीबारी में 6 फलस्तीनियों की मौत के बाद इसराइल और फलस्तीन के बीच तनाव बढ़ गया है। यरूशलम और पश्चिमी तट के हालातों पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। इस्लामिक स्टेट के जिहादी सीरिया के सबसे बड़े शहर अलप्पो की दहलीज तक पहुंच गए हैं। रूस और अमरीका की बमबारी के बावजूद शुक्रवार को जिहादियों ने अलप्पो के नजदीक कई गांवों पर कब्जा कर लिया। अलप्पो और सीरिया के हालातों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साहित्य का नोबेल जीतने वाली बेलारूस की लेखिका स्वेतलाना अलेक्सीविच शनिवार को बर्लिन में एक प्रेस वार्ता करेंगी। बेलारूस में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठक के बाद IMF की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड रविवार को लीमा में 2015 के बाद के विकास एजेंडे के बारे में जानकारी देंगी।
खास रिपोर्ट, बेसुरा नदी के किनारे बसा है महाराष्ट्र का बीड ज़िला। शहर के बाहर कुछ कुछ पहाड़ी नुमा इलाकों में ऐसे कई गांव हैं जो देखने में तो खूबसूरत लगते हैं, मगर हालात ये है कि जल स्तर 800 फीट तक नीचे जा चुका है और पीने का पानी तक मुहैया नहीं। गांव की आधी से ज़्यादा आबादी को साल के 6 से 7 महीने कारखानों में काम करना पड़ता है, जिसके लिए मिला एडवांस उनकी ज़िंदगी में लगी बेड़ी की तरह बन गया है। एक रिपोर्ट के साथ अजय शर्मा।
महाराष्ट्र के गांव येल्दा तक जाते हुए कुदरत मानो हर जगह आपका स्वागत करती दिखती है, पर यह भ्रम देर तक पाले रखना ठीक नहीं। बीड़ के गांव येल्दा में दिवाली के बाद अंधेरा छा जाता है। ये आज़ाद भारत का वो गांव है जिसकी 3/4 आबादी हर साल बंधुआ मजदूर की तरह प्रवास करती है। इनकी जमानत जमीन नहीं, एडवांस होता है, जिसके नाम पर वो खुद को बेच देते हैं। येल्दा तक पहुँचते पहुँचते आपकी नज़रों पर पड़ा पर्दा हटने लगता है। सूखा पीड़ित इस गांव में घुसते ही तब तस्वीर और साफ हो जाती है जब आप तुकाराम भीमराव कांबले से मिलते हैं। तुकाराम इस गांव का वो शख्स है जो हर साल 6 से 7 महीने तक अपनी पत्नी के साथ कर्नाटक जाता है। दोनों को कंपनी अगले साल के लिए करीब 60 से 70 हज़ार रुपये एडवांस देती है। ये पैसा इस बात का वायदा है कि वो अगले साल उनके कारखाने में काम करने पहुँचेंगे। मराठी नुमा हिंदी का अनुवाद सुनने के बाद गांव के दिगंबर चव्हाण के जरिए मैंने जाना कि तुकाराम और उनकी पत्नी असल में कुछ कंपनियों के बंधुआ बन चुके हैं। सूखे ने इनकी कपास, सोयाबीन और ज्वार की खेती मार दी है। जब मैंने तुकाराम से पूछा कि वो काम करने बाहर क्यों जाते हैं तो उनका गुस्सा छलक पड़ा।
बारिश ने नहीं दरे, बारिश कम है, अगर खाने को मिलता तो नहीं मिलता, पर फिर गन्ना तोड़ के आपस रुपए जाने का फिर इधर लेने का वो खाने का है।
इनका कहने का मतलब है कि इधर बारिश के कारण इधर काम धंधा नहीं मिलता, इसी वजह से उनको उस तोड़ कामगार करने के लिए उधर जाना पड़ता। कई ये महाराष्ट्र छोड़ के जाते, कभी कर्नाटक जाते, कभी सोलापुर जाते, मराठवाड़ा छोड़ के वो बाहर जाते।
उस तोड़ माने जो है
गन्ना तोड़ने के वास्ते जाते हो। ये क्या करते कि साल में से 6 महीने उधर जाते, 6 महीने जाने के बाद ये क्या करते, पहले उचल लेते, पहले एडवांस लेते हो, एडवांस लेने के बाद वो एडवांस रिटर्न करने के वास्ते ये इधर जाते हो। और इधर क्यों नहीं जाए, ये इसलिए जाते कि इधर खेती कम है और डोंगराल भाग है पूरा मुरमाड़।
तुकाराम 55 साल के हैं और पिछले 30 साल से यही बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। उनके बच्चे भी उनके साथ ही हर साल प्रवासी मजदूर बनते हैं, क्योंकि पीछे गांव में उन्हें देखने वाला कोई नहीं। तुकाराम की पत्नी गंगूबाई तुकाराम कांबले बताती हैं,
घरी जर माणूस कोणी असलं तर माणूस ठेवतं, घरी नसल्यावर कोणी माणूस कोणा पसिल्या करायला ठेवायचं, मग सोबत घेऊन जायचं आपल्या। आणि इथं जर आपण बी राहिलो तर मग आपण कसे संग खायचं, काय त्या लेकरायला शिक्षण घालायचं, का आपण खायचं, का बाजार घरात आणायचा।
इनका कहने का मतलब है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं होगा तो बच्चों को किसके पास छोड़ के जाने का, इसीलिए वो क्या करते कि बच्चों को साथ मिली जाते, उनकी पढ़ाई वगैरह छोड़ देते उधर जाने के बाद। अगर इधर का रुके तो इनका बच्चे की पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के वास्ते इनकमिंग सोर्स नहीं है इनके पास, इसीलिए वो उधर जाते गन्ना तोड़ने के वास्ते।
यही हाल गाँव के करीब 75% शारीरिक रूप से काम करने लायक मर्दों का है। ये बंधुआ प्रवास दिवाली के बाद शुरू होता है और इसके बाद एडवांस के साथ इन्हें अगले साल जून में छुटकारा मिलता है। फिर एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। येलदा में गन्ने और ज्वार की जो खेती थी पिछले 2 साल में बारिश ना होने से बर्बाद हो चुकी है। गांव में सिर्फ 2 तालाब हैं, पर हमारे पहुंचने से 2 दिन पहले हुई बूंदाबांदी के बाद वहां कुछ नमी दिख रही थी। असल में ये नमी जानवरों की प्यास बुझाने के काबिल भी नहीं। फिलहाल पानी के लिए 2 किलोमीटर तक गाँव पैदल चलता है, मगर दिवाली के बाद वो सूना हो जाएगा। पीछे रह जाएंगे कुछ बुजुर्ग जो अपने खेतों की प्यासी जमीन पर बैठकर आसमान तकेंगे। अजय शर्मा, BBC, गांव येलदा, तालुका अंबाजोई, जिला बीड, महाराष्ट्र।
BBC इंडिया बोल।
हाल ही में पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली का मुंबई में होने वाला कार्यक्रम शिवसेना के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान से आने वाले कलाकारों और खिलाड़ियों का विरोध होता रहा है। सवाल यह है कि क्या हमारी सहिष्णुता खत्म हो रही है या फिर इसकी वजह राजनीति है। शनिवार BBC इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
श्रोताओं, आपको याद होगा कि शनिचर के दिन हम एक साप्ताहिक कार्यक्रम पेश करते हैं, खेल खिलाड़ी। सुनिए आदेश कुमार गुप्त से।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जब तरोताजा होकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बीते गुरुवार को समाप्त हुई 2020 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज में खेले तो शायद ही किसी को आशंका रही हो कि दक्षिण अफ्रीका उन पर इतना भारी पड़ेगी। पहले मैच में तो 200 रन जैसे भारी भरकम लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने भारत को 7 विकेट से मात दी तो दूसरे मैच को उन्होंने 6 विकेट से अपने नाम किया। दूसरे मैच में तो भारतीय टीम का 17.2 ओवर में ही केवल 92 रनों पर बंधा। इसके बाद तीसरे मैच में भारत के जीत के अरमानों पर पानी फिरा और मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। अब कल से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू होगी, जिसका पहला मैच कल ग्रीन पार्क कानपुर में खेला जाएगा। भारत की टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी ही संभालेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान ABD Villiers के हाथों में होगी। 2020 सीरीज हारने के बाद अब अगर एक दिवसीय सीरीज भी धोनी के हाथों से निकल गई तो उनके क्रिकेट करियर पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। चेतावनी वाले अंदाज में क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
धोनी मेरे ख्याल से क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए तो अब उनके पास मौका यही है कि आप ODI में कंसिस्टेंटली परफॉर्म इस तरह से करें कि सवाल ही नहीं उठे आपसे। अक्सर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं जो सब फॉर्मेट खेलते हैं, अगर एक फॉर्मेट में हल्का हो गया उनका फॉर्म या फेल हो गए तो दूसरे फॉर्मेट में मौका बनता है अपनी जगह संभाल के रखने के लिए। यहाँ पर धोनी के पास ये मौका नहीं है। और ना भूले अगर वन डे सीरीज में उसके बाद जो वन डे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है वहां पर उनका फॉर्म सही नहीं रहा तो फिर सिलेक्टर के मन में ये सवाल आएगा, जहन में सवाल आएगा कि T20 वर्ल्ड कप में उन्हें ही कैप्टन बनाना चाहिए और उन्हें ही खिलाना चाहिए और किसी को लेना चाहिए।
और अब बात मुक्केबाजी की। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक, साल 2009 में मिलान में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक और उसके बाद साल 2010 में ग्वांगझू में एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक, ये सारी उपलब्धियां भारत के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को दूसरे मुक्केबाजों से बेहद अलग करती हैं। शायद यही कारण है कि जब कुछ महीने पहले उन्होंने प्रोफेशनल मुक्केबाजी में जाने का फैसला किया तो सबको कुछ आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन आज वो दिन आ पहुंचा है जब वो अपना पहला प्रोफेशनल मुकाबला ब्रिटेन के सोनी विटिंग से खेलेंगे। विजेंद्र को पहले ही पता था कि उनकी नई राह आसान नहीं है।
प्रोफेशनल फाइट करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, उसकी ट्रेनिंग मेथड बहुत अलग होता है, उसके जो प्रमोटर्स हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं, वो सब ये चीजें कायदे से करते हैं, एक तरीके से करते हैं, तभी आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन पाते हो। ये नहीं कि आपने बोल दिया और प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए, इतनी आसान राह नहीं है। इसके लिए प्रॉपर अलग ट्रेनिंग जो कि इंडिया में नहीं होती, इसके लिए बाहर या तो यूके या यूएस में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन पाओगे।
नहीं रहा विजेंद्र के लिए भले ही आसान ना हो, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि इरादे अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। वैसे उनके प्रतिद्वंद्वी सोनी विटिंग इससे पहले 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं और 1 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और अब बात हॉकी की। इन दिनों न्यूजीलैंड का दौरा कर रही भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 3रे मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी। भारत के लिए पहला गोल खेल के 10वें मिनट में हुआ जब रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, लेकिन 22वें मिनट में न्यूजीलैंड के जारेड पांचिया ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद 41वें मिनट में रमनदीप सिंह ने गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई, जबकि न्यूजीलैंड के स्टीव एडवर्ड ने मैदानी गोल कर न्यूजीलैंड को फिर 2-2 से बराबरी पर ला खड़ा किया। लेकिन खेल के अंतिम क्षणों यानी 60वें मिनट में भारत के धर्मवीर सिंह ने न्यूजीलैंड का तख्ता खड़खड़ा कर स्कोर 3-1 किया और इसी स्कोर के साथ भारत ने मैच भी अपने नाम किया। और अब बात टेनिस की। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस चाइना ओपन के महिला युगल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में मेजबान चीन की चेन लियांग और यी फान यांग की जोड़ी को 6-2 6-3 से हराया। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
और अब सुनते हैं विश्व समाचार एक बार फिर से।
बिहार में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो रहा है। 12 अक्टूबर को 49 सीटों के लिए मतदान होगा। इसराइली सेना का कहना है कि एक फलस्तीनी लड़ाकों ने गजा पट्टी से दक्षिणी इसराइल में एक रॉकेट दागा है। शुक्रवार को इसराइल की गोलीबारी में 6 फलस्तीनी मारे गए थे। अमेरिका सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने की अपनी बेहद महंगी रणनीति के नाकाम होने के बाद नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिका अब सीरिया में विद्रोहियों को प्रशिक्षण देना बंद करेगा। सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी बढ़त हासिल करते हुए अलप्पो के करीबी इलाकों में विद्रोहियों के कब्जे से कई गाँव छीन लिए हैं। तुर्की में पुलिस ने ट्विटर पर राष्ट्रपति का कथित अपमान करने के आरोप में एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार के संपादक को गिरफ्तार किया है। संपादक की गिरफ्तारी को टीवी पर लाइव दिखाया गया। अमेरिका के एरिजोना और टेक्सास प्रांत में यूनिवर्सिटियों में हुई गोलीबारी की वारदातों में 2 लोग मारे गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओरेगॉन के एक कॉलेज में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के बाद कहा है कि अमरीका को गोलीबारी की घटनाएं रोकने के लिए एकजुट होकर आगे आने की ज़रूरत है और ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के जीवन से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए गए हैं। BBC समाचार।
स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे पेश होंगे ताज़ा समाचारों के साथ रिपोर्ट और विश्लेषण। नमस्कार।